भागवत सार की श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। तो इसके एक श्लोक को दोहराएंगे, छठा श्लोक, और फिर चर्चा आगे करेंगे। यस्य मृतामलयश श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदश्वपचाद्विकुण्ठा सोहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम्। यस्य मृतामलयश श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। यस्य मृतामलयश श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगताश्चपचद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। जिसका अमृत अमृत अमल दूषण रहित यश यश या महिमा श्रवण सुनना अवगाह प्रविष्ट करना सद्यः तुरंत पुनाति पवित्र करता है जगत ब्रह्मांड आश्वपचात कुत्ता भक्षक तक विकुंठः चिंता रहित सह वह व्यक्ति अहम मैं हूँ भवद्भ्य आपसे उपलब्ध प्राप्त सुतीर्थ तीर्थ यात्रा का सर्वोत्तम स्नान। तीर्थ यात्रा का सर्वोत्तम स्थान कीर्ति ही यश छिंदाम काट देगा सुबाहुम अपनी भुजा अपि भी वह आपके प्रति प्रतिकूल वृत्तिम शत्रुवत कार्य करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूँगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लें तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक वांग्मय में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है। यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं, जैसा कि श्लोक में तथा भगवत गीता के कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न भी ले या यदि वह चांडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें से 32वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का ना हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से। जहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है तो उसे चांडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्च विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ न समझे, न ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री तपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लेंगे और फिर इस अध्याय पर चर्चा करेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीच चतह कर हानम च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोऽस्फुर।
वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय का मुनियों के द्वारा शाप, जय विजय को। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे चार कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं देवताओं को, क्योंकि देवताओं ने आकर प्रश्न किया कि ये सारा जो अंधकार हो गया है पूरे ब्रह्मांड में, ये कैसा भयभीत कर देने वाला वातावरण है, तो क्यों हुआ ऐसा, इसकी कथा ब्रह्मा जी सुनाते हैं। और कैसे दीति के गर्भ में ये दोनों बालक आए और फिर कैसे इनका कौन है ये दो बालक, तो बताते हुए चार कुमारों की कथा बताते हैं कि कैसे वो वैकुंठ गए जहाँ पर उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया जय और विजय को, और फिर भगवान वहाँ आए। तो अब आगे की कथा वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान आ गए तो पहले श्लोक से लेकर करीब 12 श्लोकों तक ब्रह्मा जी ये समझाते हैं कि कैसे भगवान ने उत्तर दिया चार कुमारों को या क्षमा मांगी। चार कुमारों ने तो दंड दे दिया था, तो अब भगवान अपने द्वारपालों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं चार कुमारों से। तो चार कुमारों को भगवान कहते हैं बहुत अच्छे सिद्धांतों को भगवान ने इसमें प्रकट किया। सबसे पहले भगवान ने स्वीकार किया। वैसे भगवान यहाँ हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो कि जहाँ श्राप दे दिया गया है, क्रोध आ गया है, तो एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले उन्होंने जो दंड दिया था उसको सही माना कि आपने जो भी किया है वो एकदम सही है। आपने जो दंड दिया आप सोचिए नहीं कि गलत है, एकदम सही दंड दिया आपने। तो सबसे पहले भगवान ने स्वीकारा। कभी कभी हम लोग कोई गलती कर बैठते हैं, कोई दंड दिया जाता है, हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो भगवान अपने उदाहरण से सिखला रहे हैं कि सबसे पहले हमें स्वीकारना चाहिए। और साथ ही साथ फिर भगवान ने ये भी स्वीकारा कि मेरे जो सेवक हैं इन्होंने गलती कर दी थी और इनकी गलती हुई आपके प्रति। इस पूरे प्रसंग में, इस पूरे विशेषतः अध्याय में भगवान के भक्तों के महत्व को वर्णित किया गया है कि भगवान के भक्तों का क्या महत्व है, भक्तों के विषय में चार कुमार क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, इसका वर्णन किया गया कि क्या स्थिति है भक्तों की। तो भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी दंड दिया वो सही है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि जो भी सेवकों के द्वारा गलत कार्य कर दिया जाता है तो स्वामी को उसका जिम्मेदारी लेनी होती है। तो इसीलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे जो सेवक हैं उनसे आपके प्रति गलती हो गई, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके प्रति। और क्यों अपराध हो गया? क्योंकि आप भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं इन श्लोकों में कि जैसे हम लोग देख रहे हैं श्लोक में कि किसी सेवक के द्वारा किए गए गलत कार्य का लाभ, गलत कार्य का दंड स्वामी को लेना चाहिए। और फिर वो बताते हैं भक्तों के महत्व को कि कौन भक्त है, किसे भक्त कहना चाहिए। तो इस श्लोक में कहते हैं कि वो शपच ही क्यों ना हो, अगर कुत्ते का मांस खाने वाला इतना व्यक्ति ऐसा नीच ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भक्त है, वो उसने मेरे नाम को, मेरे यश को, मेरी कीर्ति को, मेरे गुणों को सुना है और सुनने के द्वारा वो शुद्ध हो गया है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। तो यहां से भगवान भक्तों के महत्व को कहना शुरू करते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी करने तैयार, अपना हाथ भी काट कर देने के लिए तैयार। अर्थात जैसे अब वो जय और विजय जो उनके दोनों बाहु के समान है, मैं उसको काटने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्तों का अपमान कर दिया, भक्तों के प्रति अपराध कर दिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि देखिए भगवान कितना महत्व दे रहे हैं भक्तों को, कि अगर वो भक्तों के लिए अपना हाथ, उनकी रक्षा के लिए वो अपना हाथ काटने के लिए भी तैयार हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, अब भक्तों के महत्व को कहे जा रहे हैं भगवान। तो उन्होंने कह दिया, यानी पहले समझाया कि कितना मैं प्रेम करता हूं उनसे, उनकी रक्षा के लिए अपना हाथ अगर मुझे काटना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। देखिए भगवान आत्मीयता को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? हम लोग कभी कभी किसी की मदद करने जाएं कोई बाहर वाले की, लेकिन अगर हमें नुकसान हो रहा हो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत अपना आत्मीय जन है, एक पिता है अपने पुत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रेम है। भले उसका हाथ कट जाए, उसका पांव कट जाए, उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो फिर भी अपने पुत्र को बचाना चाहेगा। तो ये आत्मीयता, ये प्रेम भगवान प्रकट कर रहे हैं कि मैं, मेरे लिए भक्त मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। अगर मुझे अपने प्राण देने पड़े या कहे जाए कि अपने अंग काट कर देने पड़े, कोई बात नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे भक्तों की चिंता है। तो कभी कभी जब आत्मीयता की बात होती है तो लोग कहते हैं आप मुझे बहुत प्रिय हैं, फिर उसके आगे कहा जाता है आप मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन उसके आगे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि केवल प्रिय नहीं है, केवल मेरे समान प्रिय नहीं है, प्राणों से भी ज्यादा मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगा अपने भक्त को बचाने के लिए। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि क्यों, फिर आगे वो वर्णन करते हैं, भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे चरण बहुत शुद्ध करने वाले हैं, निश्चित है मेरे चरण कमलों में जो आश्रय लेते हैं या मेरे चरण कमलों को समर्पित करते हैं उनको निश्चित लाभ होता है, वो महात्मा बनते हैं। लेकिन क्यों मेरे चरण इतने महत्वपूर्ण हैं, मेरे चरणों का महत्व क्या है, मेरा महत्व क्या है, तो इसको वो बताते हैं। क्योंकि मैं भक्तों का सहायक हूं इसीलिए मेरे चरण कमल पवित्र बने हैं। तो भगवान कहते हैं कि लोग कहते हैं, लोक में कहा जाता है कि मेरे चरण कमल पवित्र हैं, लेकिन क्यों हैं? हाँ पवित्र हैं, क्यों हैं? क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, मैं अपने भक्तों की सेवा कर रहा हूं, उसके कारण मेरे चरण पवित्र बने हैं। मेरे चरण पवित्र हैं इसीलिए मेरे भक्त मेरे पास आ रहे हैं या मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी महानता किसमें है कि मैं भक्तों की सेवा करता हूं। और भक्त क्या कहता है, भक्त कहता है कि मेरी महानता किसमें है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज को बताते हैं कि भक्त भगवान की सेवा के लिए आतुर रहता है और भगवान भक्त की सेवा के लिए। भगवान कह रहे हैं कि मेरा महत्व मेरा गुणगान भक्तों के कारण है, और भक्त कहता है कि मेरा महत्व मेरी महानता भगवान के कारण है। तो दोनों एक दूसरे को सेवा के लिए आतुर हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, सब कुछ मुझसे आता है इसलिए मैं महान हूं, नहीं नहीं, मैं महान इसलिए हूं कि मेरे भक्तों का मैं सेवक हूं। और भक्तों के गुणगान में आगे वो कहते हैं, तो देखिए पहले उन्होंने कहा कि भक्त मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, अपना हाथ काटकर कुछ भी देने के लिए तैयार हूं मैं भक्तों की रक्षा के लिए। और फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, मेरी महानता भी इसी में है कि मैं भक्तों की सेवा करता हूं। और फिर भगवान कहते हैं कि हालांकि यज्ञों में मुझे जो भी अर्पण किया जाता है मैं उसको स्वीकार करता हूं, यज्ञ की अग्नि भगवान का मुख मानी गई है। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि यज्ञ में जो भी डाला जाता है, अर्पित किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब होती है जब मेरे भक्त को, और यहां पर भगवान विशेषता कहते हैं कि घी से बने हुए व्यंजन जब मेरे भक्त को खिलाए जाते हैं, तो भगवान मतलब अच्छी तरह से, हाँ विशेष उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया, धृत लुप्त घी से भरे हुए, यहां पर हिंदी में अनुवाद है, मुझे यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो भक्तों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दो तरह से मैं खाता हूं, एक यज्ञ की अग्नि से, तो यज्ञ में जो अर्पित किया जाता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, तो यज्ञ में भी घी डाला जाता है, अन्य चीजें डाली जाती हैं, आहुतियां दी जाती हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मुझे उतना आनंद नहीं देता जब मैं भक्तों को खाते हुए देखता हूं। जब मैं ये देखता हूं कि ब्राह्मण या भक्त उनको घी से सिक्त बहुत अच्छे व्यंजन खिलाए जा रहे हैं तब मैं बड़ा संतुष्ट हो जाता हूं। तो घी से सिक्त व्यंजन क्यों कहा भगवान ने, मतलब बड़ा अच्छी तरह से उन्हें खिलाया जाता है। भक्तों की सेवा जब अच्छे से की जाती है, ऐश्वर्य से की जाती है, अच्छे भाव से हृदय से की जाती है, तब मैं प्रसन्न होता हूं। तो देखिए भगवान एक के बाद एक भक्तों के महत्व को बता रहे हैं, रक्षा करने में अपना हाथ काटने के लिए तैयार हूं मैं, महानता में उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं मैं, और अगर प्रसन्न होना है तो उनको खिलाइए, तो भगवान कहते हैं जब भक्तों को आप खिलाओगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, वो मुझे बहुत आनंद देता है। और इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, मेरे चरणों से निकली हुई गंगा ये सबको पवित्र करती है, शिवजी भी उसको अपने सर पर धारण करते हैं। तो जगत में ये प्रसिद्ध है कि भगवान के जो चरण धूली है, भगवान के चरणों से निकला जल है, ये पावन करता है। लेकिन आप जान लो, चार कुमारों को बता रहे हैं, देखिए ज्ञान दे रहे हैं भक्ति का, कि आप जान लो कि मैं भक्तों के चरण धूली अपने सर पर रखता हूं। इसको हम पढ़ना चाहेंगे, भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकलता हुआ जल है, वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। वैसे इसका जो अनुवाद है थोड़ा सा हिंदी में बदल गया है। भगवान कहते कि अगर मैं अपने भक्तों की चरण धूली अपने सिर पर ले सकता हूं तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये करने से मना करेगा, अर्थात जो चरणों की धूली को सिर पर लेने से मना करेगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप लोग सोचते हो कि मेरे चरणों की धूल, मेरे चरणों से निकला हुआ जल पवित्र करने वाला है, और मैं सोचता हूं कि मेरे भक्तों की चरण की धूली ये पवित्र करने वाली है और उससे मैं पवित्र हुआ हूं। देखिए ये भगवान का भाव है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि उनके जो भगवान ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर बनाए रखते हैं। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। तो देखिए भगवान क्या समझा रहे हैं कि भगवान क्यों मैं ये बता रहे, भगवान ने आकर उनको कहा कि आपने जो किया सही किया, आपके प्रति अपराध हुआ था तो क्यों हुआ, क्योंकि आप भक्त हैं और भक्तों की क्या स्थिति है। तो भगवान एक के बाद एक, देखिए धीरे धीरे कितनी आत्मीयता भगवान प्रकट कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने कहा कि मैं अपना हाथ काट कर देने के लिए तैयार हूं, फिर कहा कि अगर खिलाना है तो उनको खिलाओ, उससे मुझे आनंद होगा। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि मेरे चरण पवित्र इसलिए हैं क्योंकि भक्तों की मैं सेवा करता हूं, मैं भक्तों की सेवा करने तैयार हूं। और कैसी सेवा, वो कह रहे हैं उनके चरण की धूली अपने सर पर रखने तैयार हूं, ये मेरे भक्तों का स्तर है। और फिर वो कहते हैं कि जब मैं ये करने तैयार हूं तो कौन मूर्ख व्यक्ति है जो नहीं करने तैयार। अर्थात प्रभुपाद कह रहे हैं संत तात्पर्य में कि जब भगवान खुद ये कह रहे हैं कि इनके भक्तों की चरणों की धूली मैं अपने सर पर रखने तैयार हूं तो कौन व्यक्ति होगा जो इसको नहीं करेगा। अर्थात ये सर्वोच्च कार्य है, जो कार्य भगवान करे वो धर्म है, वही धर्म है, वही साक्षात्कार का मार्ग है, वही कृपा प्राप्त करने का मार्ग है, वही तपस्या है, वही शुद्धता है और वही कृपा है। इसको हमें समझना चाहिए। तो भगवान ये बतला रहे हैं कि भक्तों के चरणों की धूली ये मैं अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं, इतनी शक्तिशाली है ये, इतनी महान है। तो भगवान इन बातों को धीरे धीरे कैसे ले जा रहे हैं कि मैं उन भक्तों के चरणों की धूली को अपने अपने सर पर रख सकता हूं। कितना, जैसे हम लोगों ने कथा सुनी कि एक समय नारद मुनि से भगवान ने कहा कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तो नारद मुनि ने कहा क्या उपाय है, तो भगवान ने कहा भक्तों की चरण धूली लेकर आओ, वो मेरे सर पर लगाओ, सबसे अच्छा उपाय, सारा सर दर्द दूर हो जाएगा। नारद मुनि गए सब जगह पर तो सबने मना कर दिया, क्योंकि भक्त कभी ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरे चरणों की धूली कृष्ण के सर पे लगे, हाय 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 नरक जाना पड़ेगा, कभी नहीं करूंगा, नाश हो जाएगा मेरा। भक्तों ने मना कर दिया, कैसे कह सकते हैं। गोपियों ने बिल्कुल मना नहीं किया, गोपियों ने कहा चरण धूली चाहिए लेकर आओ, बोरी भर कर लेके जाओ,
हम सब अपने पांव अभी भी मिट्टी में डालकर झाड़ कर देती हैं, ले जाओ। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए, अरे तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे चरणों की धूलि भगवान के सिर पे जाएगी, नरक में जाओगी तुम सब। गोपियों ने कहा अच्छा है हम नरक में जाएं, अगर भगवान के श्री कृष्ण के सिरदर्द को दूर करने के लिए हमें जन्मों जन्मों तक नरक में रहना पड़े तो वो भी हमें तैयार है, लेकिन उनका सिरदर्द अगर दूर हो जाए तो बस ये ठीक है। ये भक्ति है, ये भक्त है। तो भगवान इसीलिए ऐसे भक्तों की चरण धूलि अपने सर पर लगाना चाहते हैं जो उनके लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। तो ये एक प्रतियोगिता है, भक्त भगवान के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, भगवान की सेवा के लिए, और भगवान उनकी सेवा के लिए उनके चरणों की धूलि अपने सिर पर लगाने के लिए तैयार है कि ये मेरे महान भक्त है, ऐसा कौन होगा। इसीलिए भगवान बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कृष्ण कभी कभी कि ये भक्तों में क्या है, ये इतना मुझसे प्रेम क्यों करते हैं मेरे भक्त, ऐसा क्या है मुझ में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये सारे भक्त इतना प्रेम करते हैं। तो वही जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, देखने के लिए भक्त बनकर आते हैं कि क्या है ये भक्ति, क्या है ऐसा प्रेम, ऐसा आकर्षण, ऐसा समर्पण, ये भक्त कैसे होता है इनमें, ये जानने के लिए भक्त बन जाते हैं। और फिर भक्त बनकर समझ में आता है, इसीलिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं और उनको कहते हैं कि आपके विरह में एक क्षण भी कई युगों के बराबर प्रतीत हो रहा है। तो उसको अनुभव करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए भगवान इन बातों को यहां पर कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे भक्त प्रिय हैं, भक्तों को भी मैं प्रिय हूं, और भक्त मुझे कितने प्रिय, कौन लोग मुझे प्रिय हैं और कौन लोग प्रिय नहीं हैं, अब उनका वर्णन करते हैं अगले दो श्लोकों में। तो वो कहते हैं कि जो लोग ब्राह्मणों को, भक्तों को और गायों को और निस्सहाय प्राणी को मुझसे अलग मानते हैं, मेरे शरीर से अलग मानते हैं, वे कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, गाय बहुत प्रिय हैं और निस्सहाय प्राणी, निस्सहाय प्राणी प्रभुपाद समझाते हैं कि निस्सहाय प्राणी अर्थात जैसे पांच लोगों का वर्णन शास्त्रों में किया गया, स्त्रियों का, ब्राह्मणों का, वृद्धों का, बच्चों का और गाय का, और इनमें से दो का वर्णन भगवान ने स्पष्ट रूप से किया, ब्राह्मण और गाय, अर्थात भक्त और गाय। इसको थोड़ा कम करो, तो ब्राह्मण और गाय। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों को मुझसे अलग मानता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी ओर जो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, देखिए भगवान सारी चीजें भक्तों के महत्व के लिए बता रहे हैं। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों को, गायों को, निस्सहाय प्राणियों को मुझसे अलग मानता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो मेरा भक्त नहीं है। अर्थात जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, लेकिन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता, भक्तों को आदर नहीं देता, गायों की हत्या करता है, प्राणियों की हत्या करता है, निस्सहाय प्राणी जो अपनी रक्षा नहीं कर पाते उनकी हत्या करता है, वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो फिर मेरा भक्त कौन है? लक्षण देते हैं, मेरा भक्त वो है जो भक्तों के श्राप देने पर भी, भक्तों के दंड देने पर भी, क्योंकि अभी अभी दंड दिया है, तो भक्तों के दंड देने पर भी क्रोधित नहीं होता, बल्कि बड़े मुस्कुराकर क्षमा याचना करता है, ऐसा भक्त मेरा भक्त है, वो मेरे मुझे प्राप्त कर सकता है। तो देखिए भगवान बता रहे हैं भक्तों के गुणों को कि क्या गुण होना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति, भगवान यह कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कटु वचन भी बोल देता है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे कि दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनके प्रति आकर्षित हो जाता हूं, अर्थात नम्रता, कि अगर कोई ब्राह्मण कोई भक्त कटु वचन भी कह देता है, जैसे नारद मुनि ने नलकुवर मणिग्रीव को कहा, शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ 100 वर्षों तक, देवताओं के खड़े रहो वहां पर, वृक्ष हो गए, शाप दिया, लेकिन नलकुवर मणिग्रीव ने क्षमा याचना की कि ठीक है आपने जो किया सही है, हमसे गलती हो गई थी। जैसे यहां जय विजय ने किया, जय विजय को श्राप दिया, कटु वचन बोले कि ये लोग कौन हैं, किसने यहां खड़ा किया है इनको, ये योग्य नहीं है वैकुंठ में रहने के लिए, इनको तो नीचे चले जाना चाहिए। ठीक है, आपने जो कहा वो सही है, क्षमा चाहते। तो भगवान कहते हैं कि बाहरी दिखावा नहीं, हृदय से जो प्रसन्न होते हैं कि हाँ भक्तों का हमें आशीर्वाद श्राप के रूप में मिला, वो मुझे मोह लेते हैं, मैं उनके प्रति बिक जाता हूं। तो देखिए ये भगवान है, तो भगवान ये बतला रहे हैं कि भक्तों का कितना महत्व है। तो अगर हमें प्राप्त करना है भगवान को, तो इसीलिए हमें ऐसे गुणों को उत्पन्न करना चाहिए, हमें ब्राह्मणों को भक्तों के प्रति आदर रखना चाहिए, गायों के प्रति आदर रखना चाहिए। और बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि मैं उनके चरण कमलों की धूली अपने सर पर ले सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो ऐसे गुणों को हम जब उत्पन्न करेंगे तब भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो ऐसे भगवान ने भक्तों का गुणगान करके फिर उनसे कहा कि मेरे ये जो सेवक हैं, इन्होंने आपके प्रति बड़ा अपराध कर दिया, दरअसल इनको करना नहीं चाहिए था लेकिन इन्होंने अपराध कर दिया है, तो इसीलिए आपने जो दंड दिया ये ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको आदेश दें कि ये शीघ्र मेरे पास आ जाए, ज़्यादा दूर नहीं रहें, ज़्यादा समय लंबा तक बाहर नहीं रहें। तो जब ऐसा कह दिया तो जो चार कुमार थे वो भ्रम में पड़ गए, क्योंकि चार कुमार सोच रहे थे कि हमने दंड दे दिया, गलत काम कर दिया, क्रोध कर दिया, भगवान आके हमें दंड देंगे कि तुमने वैकुंठ में आके ये सब किया, निकल जाओ यहां से, क्रोध दिखाते हो, निकल जाओ यहां से, मेरे भक्त के प्रति अपराध किया, निकल जाओ। लेकिन भगवान गुणगान कर रहे हैं उनका, बहुत अच्छा किया आपने, जो किया सही किया। तो वो भ्रम में आ गए। ऐसा होता है कि कभी कोई गलती कर दे और अब उसको डांट पड़ने वाली है, और डांटने वाला डांटने की जगह बुला के उसका गुणगान करे, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही करना चाहिए, तो समझेगा मतलब कुछ गड़बड़ है, मैंने गलती की है, ये वो जानते गए थे कि मैंने गलती की, तो मैंने गलती की है और मुझे डांटने की बजाय, मुझे दंड देने की बजाय ये कहा जा रहा है कि जो किया सही किया, बहुत अच्छा, आगे भी ऐसे ही करना। तो आदमी समझ जाएगा मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो भी ऐसे ही सोचने लगे कि भगवान ये कह रहे हैं कि हमने सही किया, ये गुणगान कर रहे हैं या दूसरे तरीके से हमें डांट रहे हैं, है ना, जब व्यक्ति को कभी ऐसे भी डांटा जाता है व्यक्ति समझ जाता है, तो ये तो, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो भगवान तो सत्य बोलते हैं। तो वो कंफ्यूज एकदम भ्रमित हो गए कि ये भगवान सही में हमें ऐसा कहना चाहते हैं या घुमा फिरा के डांट रहे हैं, जैसे कभी कभी किसी को डांटना हो, किसी को थप्पड़ मारना हो तो घुमा फिरा के मारा जाता है, तो आदमी समझ जाता है कि क्या स्थिति है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता हो और फिर उसको वो कुछ ऐसा अपराध कर दे, फिर उसके अधिकारी उसको बुला कर कहें आप बहुत महान हैं प्रभु, आप गलती कर ही नहीं सकते, आपसे कैसे गलती हो सकती है, आप भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं। वो व्यक्ति समझ जाए जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ऐसे चार कुमार समझ गए कि ये समझ नहीं पा रहे थे भगवान सत्य बोल रहे हैं सही में या घुमाकर थप्पड़ मार रहे हैं, हमें बता रहे कि तुमने कितनी बड़ी गलती भक्तों के प्रति कर दी। भगवान बोल रहे थे आप भक्त हैं, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया, लेकिन चार कुमार सोचने लगे भगवान कहीं ये तो नहीं बोल रहे कि ये मेरे भक्त हैं दोनों द्वारपाल और इनके प्रति आपने अपराध कर दिया, मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो एकदम भ्रमित हो गए कि ये क्या है। तो फिर वो कहने लगे, भगवान को प्रार्थना अर्पण करने लगे, वो कहने लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे कार्य को जो हमने गलत कार्य किया उसको सही बता रहे हैं, आप हमारा गुणगान कर रहे हैं या हमें दंड दे रहे हैं, ये क्या बात है, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी वो भगवान का गुणगान करने लगे और वो कहने लगे कि आप कौन हैं, भगवान के गुणों को, भगवान की शक्ति को वो प्रकट करने लगे कि किस तरह से वो कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही जीव को उसकी सही मार्ग पर उसको लाने वाले हैं। तो ऐसे वो लोग बहुत सारा वर्णन करने लगे कि किस प्रकार से आप धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, आप भक्तों से बहुत आसक्त हैं, आप इतने आसक्त हैं भक्तों से जितना लक्ष्मी देवी से भी आसक्त नहीं है। वो कहते हैं कि लक्ष्मी देवी भी वो इंतजार करती रहती हैं आपकी कृपा का, लेकिन आप भक्तों के प्रति ज़्यादा कृपा करते हैं। तो लक्ष्मी देवी भी, लक्ष्मी देवी से आपको आसक्ति नहीं लेकिन अपने भक्तों से आसक्ति है। और हमने जो भी किया, फिर चार कुमार कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके भक्तों को, देखिए मतलब चार कुमार समझ गए कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरे सेवकों ने आपके आपके प्रति अपराध किया, वो बता रहे कि ये वैकुंठ में रहने वाले मेरे भक्त हैं और आपने दरअसल अपराध किया। तो उन्होंने कहा हमने अपराध कर लिया, तो इसलिए आप क्षमा कीजिए और अब आप चाहें तो इनको दंड दीजिए या हमें दंड दीजिए। चार कुमार कहते हैं आप हमें दंड दे दीजिए, ये तो गलती हमारी हुई है, इनको दंड देना नहीं चाहिए, हमने इतना गलत काम कर दिया। तो ये चार कुमार ऐसे 25वें श्लोक तक बोलते हैं। 26वें श्लोक से भगवान उस सत्य को प्रकट करते हैं जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस लीला में हम देखते हैं कई ऐसी विरोधाभास चीजें आती हैं जो सही नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में इसको लिखते हैं, जैसे चार कुमारों ने क्रोध किया, ये वैकुंठ में हो नहीं सकता, श्राप दिया, ये वैकुंठ में हो नहीं सकता, और फिर इतना ही नहीं भगवान ने उसको सही भी कहा कि हाँ ये सब सही है, आपने जो किया सब सही है, और फिर अभी देखेंगे हम आगे कि उनका पतन हो जाएगा, तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में पतन हो जाएगा। प्रभुपाद कहते वो भी नहीं हो सकता, ना वहाँ कोई क्रोध कर सकता है, ना कोई इस तरह से दंड मिलता है, और ना ही कोई किसी का पतन होता है, लेकिन इस लीला में सब देखा गया। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान अब समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं चार कुमारों को कि आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचो कि आपने कोई अपराध कर दिया और आपको दंड मिलना चाहिए, दरअसल ये मेरी योजना थी। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट किया कि ये मेरी योजना थी इसलिए ये सब हुआ। तो प्रभुपाद कहते देखिए स्पष्ट हो गया ना। तो जो सारे प्रश्न थे, अरे ऐसा कैसे, वैकुंठ में क्रोध, ये वो, सब भगवान की योजना। तो भगवान की योजना में कुछ भी हो सकता है। वैसे प्रभुपाद एक चेतावनी भी देते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अपराध हैं वो वैकुंठ में भी हो सकते हैं, वैकुंठ में भी व्यक्ति अपराध कर सकता है, लेकिन जब वैकुंठ में अपराध करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कुछ नहीं होता, उसका पतन नहीं होता, लेकिन जब यहां करता है तो भगवान रक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसे चार कुमारों ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने बड़े प्रेम से उनको समझाया कि तुम चिंता नहीं करो, ये तो मेरी योजना थी। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर बात, वो कहते हैं 26वें श्लोक में जब भगवान समझाना शुरू करते हैं कि ये जान लो तुमने उनको जो दंड दिया है मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे और क्रोध के द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार से दृढ़तापूर्वक संयुक्त होकर शीघ्र मेरे पास लौट आएंगे। तो यहाँ पर समझाया गया है कि ये जो सब कुछ है ये भगवान की योजना थी इसीलिए ऐसा हुआ। प्रभुपाद एक श्लोक के तात्पर्य में इस चीज को समझाते हैं, तो हम तात्पर्य के कुछ शब्द पढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं जैसा कि श्लोक 26 के संबंध में बतलाया गया है, जितनी भी घटना घटी है उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतया इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते। ठीक है, तो ये सब जो हमने सुना ये सब हुआ, ये भगवान की योजना थी। ना ही भगवान अपने दो द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे। तो ये भी देखिए कि दोनों द्वारपाल हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, शाप मिला और भगवान ने आके कहा सही है इनको मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और ना वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वापस आ सकता है। तो प्रभु का इस तात्पर्य में इन सारे जो हमारे भ्रम हुए हमें कि अरे वहां जाकर क्रोध कैसे कर दिया, फिर वैकुंठ से कोई वापस कैसे आ सकता है इत्यादि इत्यादि, इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभिकल्पित थीं। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया है, अन्यथा केवल ब्राह्मण शाप के कारण वैकुंठ के वासियों को इस भौतिक जगत में आना असंभव होता है। तो ये नहीं हो सकता, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भगवान की योजना से हुआ। तो खैर, जब भगवान ने उनको ये बता दिया कि चिंता नहीं करो, ये सारी मेरी योजना थी, तो तुमने जो दंड दिया मैंने ही कहा था, तो उसको जानकर फिर चारों कुमार बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान की प्रदक्षिणा की उन्होंने और फिर वे चले गए। और फिर भगवान ने द्वारपालों से कहा, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि अभी तक मैंने संतुष्ट तो चार कुमारों को कर दिया, वो तो संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन द्वारपाल मन में सोच रहे होंगे कि भाई भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि देखो, जो दंड तुम्हें उनके जाने के बाद, मुनियों को संतुष्ट कर दिया चले गए, भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं हर एक को संतुष्ट करने में, उनके सामने नहीं कहा, जब चले गए तो उनको कहा कि देखो, जो मुनियों ने तुम्हें दंड दिया है मैं उसको वैसे ही जीरो कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे अंदर शक्ति नहीं है। क्योंकि वो द्वारपाल सोच रहे थे कि भाई ठीक है, अगर श्राप दे भी दिया, भगवान के अंदर तो शक्ति है ना किसी भी श्राप को समाप्त करने की, तो अपने सेवकों के लिए इतना सा नहीं कर सकते। अगर ऐसी भावना आ जाए, वैसे आएगी नहीं वैकुंठ में, लेकिन हम लोगों को पढ़ते समय ये भावना आ जाए, तो भगवान कहते हैं उन दोनों को कि देखो, जो दंड तुम्हें मिला मैं उसको समाप्त कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं, कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी योजना है, और वैसे भी तुम्हारे साथ ऐसा होना था, क्योंकि पूर्व काल में जब एक समय लक्ष्मी देवी मेरे घर को, मेरे धाम को छोड़कर गई थी, बाहर गई थी कुछ समय के लिए, और जब वापस आई तो उस समय मैं सो रहा था और तुम लोगों ने लक्ष्मी देवी को रोक दिया। तो लक्ष्मी देवी को रोका तो फिर मुझे तो कुछ तो करना है ना भाई, अब क्या करें, घर पे जाए मुझे भी जवाब देना पड़ता है पत्नी को। तो उन्होंने कहा कि तुमने लक्ष्मी को ही रोक दिया, अरे कुछ तो सोचना था। तो ऐसा भगवान बताते हैं कि लक्ष्मी देवी बाहर गई थी, जब वापस आई, गई होंगी कुछ सब्जी वब्जी खरीदने, अभी पता नहीं किस लिए गई थी, जो भी है, तो वो बाहर गई थी, जब वापस आई तो भगवान सो रहे थे, और सोते समय द्वारपालों ने कहा किसी को अंदर नहीं जाने दिए, भगवान सो रहे हैं उनको आराम करना चाहिए, और ये स्वाभाविक है कोई भी सो रहा हो तो जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वारपाल भूल गए, तो लक्ष्मी देवी हैं, भगवान भी थोड़ा डरते हैं उनसे, उनको तो डरना चाहिए था। तो उन्होंने रोक दिया लक्ष्मी देवी को, अंदर नहीं जाना। लक्ष्मी ने कहा क्या मेरे ही घर में मुझे मना कर रहे? उन्होंने कहा नहीं, भगवान सो रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोले तुमने वो किया था तब से लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दिया था, तो वो तो तुम्हारा होना ही था। तो भगवान ने बता रहे कि सारी चीजों को एक साथ कर दिया, लक्ष्मी का श्राप पूरा हो गया, चतुर कुमारों का क्रोध हो गया, भगवान की योजना भी हो गई कि नीचे जाके अब वो आराम से इनके साथ युद्ध करेंगे। तो भगवान ने उनको कहा कि चिंता नहीं करो, ये सब तो पहले से निश्चित था, ये होना था, और अब तुम लोग जाओ और वहां जाकर तुम क्रोध में मेरी भक्ति करोगे, भक्ति लेकिन क्रोध में। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि 12 रसों में भगवान की भक्ति की जाती है, 5 प्रमुख रस हैं और 7 ऐसे रस हैं जो प्रमुख नहीं है लेकिन उनमें भी भक्ति की जाती है। तो उनमें से एक है क्रोध, 7 द्वितीय रसों में। प्राथमिक जो रस है, पहले प्रमुख रस, वो है शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इन 5 प्रमुख रसों में भगवान की भक्ति होती है, लेकिन कभी कभी द्वितीय रस या गौण रस कहा जाता है उन्हें, वो आ जाते हैं, लेकिन वो आते हैं और जाते हैं, वो स्थायी नहीं, हमेशा नहीं बने रहते। जैसे भीष्म देव, उनका स्थायी भाव दास का है, वो दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं में आनंद देने के लिए कभी कभी वीर रस का आस्वादन करवा देते हैं भगवान को। तो जब युद्ध करते हैं तो ये वीर रस का आस्वादन, तो इसीलिए ये गौण रस है, तो ये इनमें भी भक्ति की जाती है। तो भगवान ने कहा इनमें से क्रोध, उसमें तुम मेरी भक्ति करोगे, भक्ति मेरी ही होगी लेकिन क्रोध होगा, अर्थात मुझसे इतना क्रोध करोगे, मेरे इतने क्रोध में रहोगे मेरे सामने कि मुझे आनंद आएगा। तो भक्त क्रोध भी कर रहा है तो भगवान को आनंद देने के लिए वो शुद्ध भक्ति है। तो इन्होंने कहा कि तुम क्रोध में भक्ति करोगे और तुम थोड़े समय नीचे रहकर बहुत जल्दी मेरे पास आ जाओगे, ज्यादा चिंता नहीं करना। तो ऐसा कह के भगवान फिर चले गए। और भगवान जब चले गए तो यहाँ पर ये जो दोनों ब्रह्मा जी अब कथा बता रहे हैं कि ये जो दोनों थे इनके सारे शरीर की कांति चली गई और फिर ये नीचे की ओर गिरने लगे। और फिर यही दोनों अब दीति के गर्भ में आए हैं और ये तो ब्रह्मांड में उत्पात करने ही वाले हैं और मेरी कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनको रोकने की मेरी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की योजना से आए हैं ये असुर भी भगवान की योजना से बने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं रोक सकता, ये तो उत्पात होगा ही, आतंक होगा ही, आपको सहन करना होगा जब तक भगवान स्वयं आकर इनका वध नहीं करेंगे। तो मेरी कोई शक्ति, तो ये बताने के लिए ब्रह्मा जी ने कथा बताई। क्यों ये सब बताया? ब्रह्मा जी पहले ही कह सकते थे कि मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ब्रह्मा जी ऐसा कह देते पहले जब देवता गए थे कि ये क्या हो रहा है, अंधकार, बचाइए बचाइए, अब ब्रह्मा जी कहते मेरे से कुछ नहीं होगा, जाओ बाद में, तो देवता रे ऐसे कैसे नहीं होगा, ब्रह्मा ही क्यों बने फिर अरे ब्रह्मा बने हो तो कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने इसीलिए इतिहास बताया कि क्यों, वो केवल एक ही वाक्य कहना चाहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्यों मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए पूरा इतिहास बताया कि जय विजय है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की योजना से असुर बने हैं और भगवान आकर वीर रस का स्वादन करके फिर इनको मारने वाले हैं, मेरी कुछ योग्यता नहीं है बीच में दखलंदाजी करने की। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा और उनसे कहा कि जो भी है चुपचाप सहन करो जब तक भगवान नहीं आते हैं और इन लोगों का वध नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे इस अध्याय में वर्णन किया गया। अब अगले अध्याय में हिरण्याक्ष का वर्णन होगा कि कैसे हिरण्याक्ष सारा ब्रह्मांड में आतंक फैलाता है। और फिर अगले अध्यायों में 16वां अध्याय आज हमने किया, फिर 17, 18, 19 इन तीन अध्यायों में हिरण्याक्ष का आतंक, फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध और हिरण्याक्ष को मारेंगे भगवान। और फिर उसके बाद ये जब 19 अध्याय तक हो जाएंगे 20वें अध्याय से भगवान कपिल की लीला प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण।